नमस्कार भारत, तारीख 23 जनवरी, दिन बुधवार, मैं हूँ मानसी दास। जिम्बाब्वे में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर उग्र प्रदर्शन, सरकार ने कहा हो रही है सुधारों की कोशिश।
One of the reasons why we're having this kind of situation is because of the plan, which is the reform agenda.
क्या सच में भाजपा विपक्ष के गठबंधन को आसान विरोधी मान रही है?
कहीं ना कहीं एक राजनीतिक चैलेंज बन सकता है, तो इसीलिए इसका मजाक के जरिए ही इनका जिक्र बार बार उन लीडरों को करना पड़ रहा है।
बर्फबारी के कारण बंद हुआ श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग, फंसे सैकड़ों ट्रक ड्राइवर।
पानी का बहुत समस्या यहाँ की, तो हमने सुबह बर्फ घोल कर चाय बनाई है। किसी के घर में जाएंगे वो वही है, वो 2 लीटर या 1 लीटर पानी देता है, बस वो कहता है बस।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेती से। जिम्बाब्वे में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। सरकार पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अमानवीय सख्ती बरतने के आरोप लगे हैं। विपक्ष ने कहा है कि सुरक्षा बलों का आतंक खत्म होना चाहिए और कानून का राज लौटना चाहिए। विपक्षी नेता नेल्सन चमीसा ने सभी राजनेताओं को रिहा करने की मांग भी की। जिम्बाब्वे के मानवाधिकार आयोग की प्रवक्ता शियेला मतिंदिके ने हरारे में संवाददाता सम्मेलन में कहा, कई शिकायतें आई हैं और चश्मदीदों ने बताया है कि हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मी उनके घरों में घुसाए और उन्हें बुरी तरह पीटा। आयोग के अधिकारी इन पीड़ितों में से कई के घर भी गए और इसकी जांच की। ये थे जिम्बाब्वे के मानवाधिकार आयोग की प्रवक्ता मतिंदिके के शब्द। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा है कि कथित इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों को हराने के बाद ही अमेरिका सीरिया से अपने सैनिक हटाएगा। बोल्टन ने कहा कि इसके अलावा अमेरिका तुर्की से ये भी गारंटी लेगा कि वह कुर्द लड़ाकों पर हमला नहीं करेगा। बोल्टन के इस बयान से संकेत मिलता है कि सीरिया से अमरीकी सैनिकों की वापसी में अब देरी होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले महीने घोषणा की थी कि सीरिया से सभी 2000 अमरीकी सैनिक जल्द हट जाएंगे। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ट्रांसजेंडर्स को सेना में जाने से रोकने की नीति लागू करने की हरी झंडी दे दी है। अमेरिका के शीर्ष कोर्ट ने ट्रंप के प्रशासन के इस फैसले को 4-5 मतों से मंजूर किया। इस नीति के तहत ट्रांसजेंडर लोगों को सेना में आगे आने से रोका जाएगा। प्रशासन का कहना है कि ट्रांसजेंडर्स को नियुक्त करने से सेना के प्रभाव और क्षमता पर बड़ा जोखिम पैदा हो सकता है। एलजीबीटी समुदाय ने इस बैन को क्रूर और अतार्किक बताया है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा ने रूस पर फिर से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है हालांकि रूस निर्धारित समय पर लैब के नमूने उपलब्ध नहीं करा पाया था और उस पर नमूनों के साथ छेड़छाड़ के आरोप भी लगे थे। वाडा को ये नमूने 18 दिनों की देरी के बाद मिल सके थे। रूस के खेल मंत्री ने वाडा के प्रतिबंध नहीं लगाने के फैसले का स्वागत किया है। वाडा के महानिदेशक ओलिवर निगली ने माना कि डोपिंग के कुछ मामले अभी और सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा, मुझे अपने जवाबों में सतर्कता बरतनी चाहिए जब तक कि विश्लेषण का काम पूरा नहीं हो जाता, लेकिन मेरा मानना है कि डोपिंग के कुछ मामले सामने आ सकते हैं। कम से कम एथलेटिक्स की दुनिया में तो लोग ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ एथलीट शायद आज भी सक्रिय हों। ये थे वाडा के महानिदेशक ओलिवर निगली के शब्द। लेकिन बीबीसी के एक संवाददाता का कहना है कि डोपिंग के खिलाफ अभियान चलाने वाले लोग इस कदम को रूस पर वाडा के नरम रुख के रूप में देख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में सशस्त्र समूह बड़े पैमाने पर मानव तस्करी में शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सशस्त्र समूह अपनी गतिविधियां चलाने के लिए मानव तस्करी करते हैं, महिलाओं का शोषण करते हैं और कई मामलों में तो लोगों के अंगों को उनके शरीर से निकाल लिया जाता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आतंकवादी निरोधी दस्ते के कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। शनिवार को साहिवाल शहर में पुलिस दल ने 4 लोगों को गोली मार दी थी, जिसमें एक महिला और एक बच्चा भी शामिल है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय खबर से। जिम्बाब्वे में फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम दुनिया में सबसे अधिक हैं। इस कारण यहां सभी चीजें महंगी हो गई हैं और इसे लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बीते कई दिनों से चल रहे इन विरोध प्रदर्शनों में अब तक 12 लोगों की जाने गई हैं, जबकि 75 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए दिनेश उप्रेती से।
जिम्बाब्वे में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर दोगुने करने से नाराज लोग अब सड़कों पर निकल आए हैं। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन अब हिंसक रूप लेते जा रहे हैं। सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़पों में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। जिम्बाब्वे सरकार ने दावा किया था कि ब्लैक मार्केट में मुद्रा विनिमय और पेट्रोलियम पदार्थों के अवैध कारोबार की वजह से ईंधन संकट अपने चरम पर है और ईंधन की कमी को दूर करने और इसके अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए ही कीमतें बढ़ाई गई हैं। दाओस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में हिस्सा लेने आए जिम्बाब्वे के वित्त मंत्री एम्थुली एनकुए ने कहा, हम इस स्थिति में इसलिए हैं क्योंकि हमने सुधार कार्यक्रम चलाया है। कोई भी सुधार कार्यक्रम बिना तकलीफ के पूरा नहीं होता। कुछ असमानताएं हैं और हम इन्हें ठीक करने की कोशिशें कर रहे हैं। ये थे जिम्बाब्वे के वित्त मंत्री एनकुवे के शब्द। लेकिन पूरी कहानी ये नहीं है। जिन परिस्थितियों के कारण ये हालात पैदा हुए हैं उसकी जड़ में अमेरिकी डॉलर को नियंत्रित करने के लिए सरकार की लाई विवादित स्थानीय करेंसी है। यहाँ एक स्थानीय मुद्रा चलती है आधिकारिक तौर पर, जिसे अमेरिकी डॉलर के बराबर आंका जाता है, लेकिन वास्तव में ब्लैक मार्केट में इससे बहुत कम कीमत पर कारोबार किया जा रहा है। यानी अगर किसी के पास डॉलर है तो वो ब्लैक मार्केट में स्थानीय मुद्रा खरीद सकता है, और क्योंकि जिम्बाब्वे में पड़ोसी मुल्कों की तुलना में ईंधन काफी सस्ता रहा है, इसलिए तस्करी यहाँ एक बड़ी समस्या रही है।
इस मामले में संयुक्त राष्ट्र ने दखल दिया है और कहा है कि जिम्बाब्वे सरकार को देखना चाहिए कि सुरक्षा बल ताकत का इस्तेमाल ना करें। सरकार को लोगों से उनकी मुश्किलों के बारे में बात करनी चाहिए। सोमवार को हुए अफगानिस्तान के काबुल के नजदीक वारदक प्रांत में हुए तालिबानी हमले में मारे गए सुरक्षा बलों की संख्या अब बढ़कर 65 हो गई है। जिस वक्त ये हमला हुआ उसी वक्त तालिबान और अमेरिका के बीच कतर में शांति वार्ता चल रही थी। दो दिन से जारी इस वार्ता में क्या कोई सहमति बन सकी, ये जानने के लिए हमारी सहयोगी गुरप्रीत सैनी ने बीबीसी पश्तो के सहायक संपादक दाऊद आजमी से बात की। आप भी सुनिए।
मंगलवार तालिबान और अमरीका के दरमियान टॉक्स या मुज़ाकरात का दूसरा दिन था। इस मीटिंग में खसूसी तौर पर दो मसाइल पर बात हुई। एक ये कि अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज या फोर्सेस का इनखिला या विद्रॉल कैसे और कब शुरू हो, और दूसरी बात ये कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होती हैं और किसी नतीजे पर पहुंचते हैं दोनों तरफ, तो फिर इसको कैसे यकीनी बनाया जाएगा या ये गारंटी कैसे दी जाएगी कि अफगानिस्तान फ्यूचर में किसी और मुल्क के लिए खतरनाक नहीं होगा। हमारी मालूमात के मुताबिक कुछ और इश्यूज पर भी बातचीत हुई। उनमें से एक इशू ये थी कि तालिबान के जो कैदी हैं, जो प्रिजनर्स हैं, उनको रिहा किया जाए, और इसके अलावा तालिबान लीडर्स के नाम जो यूएन के ब्लैक लिस्ट पर या अमेरिका के ब्लैक लिस्ट पर, उनको भी हटाया जाए, और इसके अलावा तालिबान के पास भी कुछ अमरीकी हैं जो उन्होंने कैद कर रखे हैं और उनके साथ हॉस्टेज पर रखा हुआ है, तो उनको रिहा करने के बारे में भी बातचीत हुई।
एक और शांति वार्ता चल रही है और दूसरी ओर ये हमले भी जारी हैं।
ये तो नॉर्मल है। ये अंग्रेजी में जो कहते हैं कि फाइटिंग एंड टॉकिंग, ये दोनों एक साथ जारी रहेंगी, क्योंकि अब तक टॉक्स या मुज़ाकरात उस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं कि एक जंगबंदी हो जाए। वो मरहला आएगा लेकिन बाद में, लेकिन ये जो मरहला है ये टॉक्स और फाइट का मरहला है कि मुज़ाकरात भी जारी रहेंगी, बातचीत भी होगी और इसके साथ साथ लड़ाई भी होगी। और मेरा तो ख्याल है कि दोनों तरफ अमेरिका और अफगान हुकूमत और उसके साथ तालिबान ये चाहते हैं कि مذاکرات کی میز پر یا اپر ہینڈ حاصل کرنے کے لیے وہ جنگ کے میدان میں برتری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ دکھائیں گے کہ ہم بڑے بڑے حملے کر سکتے ہیں اور وہ یہ ثابت کرنا چاہیں گے کہ زیادہ مراعات یا کنسیشن لے سکے۔
بی بی سی پشتو کے سہایک سمپادک داؤد اعظمی سے بات کر رہی تھی گرپریت سینی۔ امریکہ میں بھارتی مول کی سینیٹر کملا ہیرس نے کہا ہے کہ وہ اگلے سال ہونے والے راشٹرپتی چناؤ میں ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار کی دوڑ میں شامل ہوں گی۔ کملا ہیرس آٹھویں شخص ہیں جو پارٹی کی طرف سے کیے جا رہے نامانکن میں اپنا دعویٰ کریں گی۔ وہ 2016 میں کیلیفورنیا سے سینیٹر کا چناؤ جیتی تھیں اور اس سے پہلے کیلیفورنیا کی اٹارنی جنرل تھیں۔ سنیے نیو یارک سے ہمارے سہیوگی سلیم رضوی کی رپورٹ۔
امریکہ کے راشٹرپتی پد کے لیے 2020 میں ہونے والے چناؤں کے لیے سینیٹر کملا ہیرس نے ایک ویڈیو کے ذریعے اپنی امیدواری کی گھوشنا کی۔
The future of our country depends on you and millions of others lifting our voices to fight for our American values.
کملا ہیرس نے ٹویٹر پر پوسٹ کیے گئے ویڈیو میں کہا کہ ہمارے دیش کا بھوشیہ آپ اور آپ جیسے لاکھوں لوگوں پر نربھر کرتا ہے جو امریکی مولیوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ یہی کارن ہے کہ میں راشٹرپتی پد کی دوڑ میں شامل ہو رہی ہوں۔ میں ان آوازوں کو اٹھاؤں گی۔ 54 سال کی کملا ہیرس ڈیموکریٹک پارٹی کی اور سے راشٹرپتی پد کے چناؤں میں پرتیاشی کی امیدوار ہیں۔ یہ پہلی بار ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے بھیتر سے ایک سے زیادہ مہیلائیں پارٹی کی طرف سے کیے جانے والے نامینیشن کے لیے لڑ رہی ہیں۔ ایلیزابتھ وارن، کرسٹن جلبرانڈ اور تلسی گبارڈ نے بھی اس دوڑ میں شامل ہونے کی گھوشنا پہلے ہی کر دی ہے۔ کملا ہیرس کو ڈیموکریٹک پارٹی کی پرائمری میں پربل دعوے دار سمجھا جا رہا ہے۔ کملا ہیرس موجودہ راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کی مکھر آلوچک ہیں۔ سوموار کو واشنگٹن میں استھت ہارورڈ یونیورسٹی میں کملا ہیرس نے کہا کہ ان کی چناوی مہم امریکی لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرے گی۔
It's going to be about talking with people about the fact that right now we have an administration that is waged a full-on assault.
ہماری مہم لوگوں کو یہ بتائے گی کہ ابھی ایسا پرشاسن ہے جس نے امریکی مولیوں پر حملہ بولا ہوا ہے۔ ہماری مہم سچی بات کرنے کے بارے میں ہوگی، عام لوگوں کا وشواس حاصل کرنے کے بارے میں ہوگی۔ اگر کملا ہیرس ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار بنتی ہیں تو وہ پہلی افریقی امریکی یا بھارتی امریکی مہیلا امیدوار ہوں گی جو کسی بڑی پارٹی سے چناوی میدان میں ہوں گی۔ لیکن کملا ہیرس پر اپنے افریقی اور بھارتی مول کے ہونے کو لے کر پہچان کی راجنیت کرنے کے آروپ لگتے رہے ہیں۔ کملا ہیرس کے پتا ڈونلڈ ہیرس، جو ارتھشاستر کے پروفیسر تھے، جمیکا سے امریکہ آئے تھے، اور کملا ہیرس کی ماں شاملا گوپالن بھارت کے چنئی شہر سے 1960 کے دشک میں امریکہ آئی تھیں۔ شاملا گوپالن پیشے سے ڈاکٹر تھیں۔ کملا ہیرس نے گرپات پر دیے گئے ایک جج کے بیان اور 2016 کے چناؤں میں روسی ہستکشیپ پر سوال اٹھائے تھے، جس کے بعد وہ پارٹی کے نیتاؤں کی نظر میں آئیں۔ کملا ہیرس کو کیلیفورنیا میں کافی سمرتھن حاصل ہے اور کیلیفورنیا پرائمری چناؤں کے حساب سے بھی اہم مانا جاتا ہے۔ رویوار کو اوکلینڈ شہر سے کملا ہیرس اپنی چناوی مہم کی شروعات کریں گی۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
خبر سچ ہے اگر بی بی سی پر ہے۔
رخ بھارت کا کرتے ہیں۔ کل بھارتیہ جنتا پارٹی کے ادھیکش امت شاہ نے چناؤ پرچار کا آغاز کیا۔ پشچم بنگال کے مالدہ میں ہوئی ایک ریلی میں انہوں نے پردیش کی مکھیمنتری ممتا بینرجی کی آلوچنا کی اور گٹھ بندھن کی ان کی کوششوں کو مذاق بتایا۔ سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔
گٹھ بندھن، گٹھ بندھن، گٹھ بندھن، یہ کس چیز کا گٹھ بندھن ہے؟ یہ ستا اور سوارتھ کا گٹھ بندھن۔ مطرو، یہ گٹھ بندھن کا ایجنڈا سپشٹ ہے۔ مودی ہٹاؤ، ہم چاہتے ہیں غریبی ہٹاؤ، وہ چاہتے ہیں مودی ہٹاؤ۔ ہم چاہتے ہیں روگ اور بیماری ہٹ جائے، وہ چاہتے ہیں مودی ہٹ جائے۔ ممتا دی، 5-25 نیتاؤں کو کھڑا ہو کر ہاتھ ملا کر ہاتھ کھڑا کرنے سے نریندر مودی کو نہیں ہٹا سکتے۔
لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سچ میں امیت شاہ اور بھاجپا وپکش کے گٹھ بندھن کو اپنا آسان ویرودھی مان رہے ہیں، اور کیا واقعی پارٹی پشچم بنگال میں اپنے قدم جما سکے گی؟ یہ جاننے کے لیے بی بی سی سنواداتا گرپریت سینی نے پشچم بنگال میں موجود ورشٹھ پترکار امیتاب بھٹاسالی سے بات کی۔
بی جے پی اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں ایک راجنیتک چیلنج بن سکتا ہے، تو اسی لیے اس کا مذاق کے ذریعے ہی ان کا ذکر بار بار لیڈروں کو کرنا پڑ رہا ہے۔
کیا ترنمول کانگریس نے امیت شاہ کی ان باتوں پر کوئی پرتکریا دی ہے؟
جی بالکل دیے ہیں۔ پہلے تو کولکاتہ کی میئر اور ممتا بینرجی کے بہت قریبی جو نیتا ہے، جو منسٹر بھی ہے، فرہاد حاکم، انہوں نے کہا تھا، اور بعد میں ترنمول کانگریس کے مہا سچیو پارتھو چیٹرجی نے ایک پریس کانفرنس کر کے امیت شاہ کے سارے جو آروپ ہے اس کو ٹھکرایا۔ پارتھو چیٹرجی یہ بھی بولے کہ امیت شاہ نے جو ریلی میں में जिस विषय पर काफी देर तक बोलते रहे कि पश्चिम बंगाल से उनको 30 से भी ज्यादा सीट मिलनी चाहिए, पार्थ चटर्जी उसका भी मजाक उड़ाया और बोले कि इनको शून्य से ज्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं बीजेपी को पश्चिम बंगाल में।
मंगलवार की रैली में अमित शाह ने कहा कि टीएमसी का अब खात्मा होगा। 2014 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने राज्य की 42 सीटों में से 34 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। तो क्या इस बार बीजेपी टीएमसी को मात दे पाएगी?
अभी तक पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में ममता बनर्जी की जो पॉपुलरिटी है उसका मुकाबला बीजेपी को करना अभी तक तो मुश्किल लग रहा है। हालांकि बीजेपी की संगठन जो है वो मोटे तौर पे पूरी पश्चिम बंगाल में ही बड़े हैं पिछले चुनाव के हिसाब से, पर ममता बनर्जी की पॉपुलरिटी का मुकाबला करने का स्थिति अभी तक नहीं है। और इसीलिए जिस ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में ममता बनर्जी के बुलावे पर रैली हुई थी शनिवार को, उसी ग्राउंड में नरेंद्र मोदी का भी रैली होना था 8 फरवरी को, और सोमवार की खबर ये है कि उस रैली ना करने का फैसला ले लिया बीजेपी, क्योंकि उनको मन में ये शंका है कि अगर उस ग्राउंड को भर नहीं पाते तो वो फ्लॉप शो कहा जाएगा। संगठन के हिसाब से भी बीजेपी काफी पीछे है, पर ये कहना है कि हाँ 2 सीटें प्राप्त हुई थी बीजेपी को, उससे कुछ बढ़ सकता है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि कोई भी सीट नहीं मिलेगी बीजेपी को, मत देना तो मुश्किल लग रहा है।
अमिताभ भट्टासाली से बात कर रही थी गुरप्रीत सैनी। और अब प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले की बात, जिसमें 2 मुख्य स्नान हो चुके हैं और प्रशासन का ये दावा है कि इन दोनों स्नान पर्वों पर संगम में 3 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन प्रयागराज शहर में भीड़ की स्थिति, स्टेशनों पर भीड़ का दबाव और सड़कों पर पसरे सन्नाटे को देखते हुए इन आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं। सुनिए कुंभ क्षेत्र से हमारे सहयोगी समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट।
कुंभ के पहले शाही स्नान यानी मकर संक्रांति के दिन शाम को मेला अधिकारियों की प्रेस वार्ता में स्नान करने आए श्रद्धालुओं की संख्या का जब जिक्र हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल कुछ इस तरह था।
नहीं, नहीं, अगर इसमें बढ़ गया तो मौनी अमावस्या में भी बढ़ जाएगा।
पत्रकारों के सवालों में व्यंग्य था तो आंकड़े जारी कर रहे अधिकारियों में कुछ बेचैनी। उस दिन अनुमान था कि 1 करोड़ की भीड़ आएगी। प्रशासन ने पहले इसे 1.84 करोड़ बताया और देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संख्या को 2 करोड़ के ऊपर पहुंचा दिया। लेकिन सवाल उठता है कि प्रशासन ने ये आंकड़े जुटाए कैसे? मेला अधिकारी दिलीप कुमार बताते हैं।
हमारे यहाँ जो घाट है, स्नान जितने लोग करते हैं, आधे घंटे से 1 घंटे इस तरह का एक आकलन होता है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के माध्यम से ये आकलन किया जाता है। इसका कोई अभी डिजिटल उस तरह की मैपिंग नहीं है जिसके आधार पर एग्जैक्ट चीज बताई जा सके।
प्रयागराज में इस बार हो रहे अर्धकुंभ को सरकार ने कुंभ का नाम दे दिया है और इसे भव्यता देते हुए दिव्य कुंभ के रूप में जमकर प्रचारित किया। 4200 करोड़ रुपए का लंबा चौड़ा बजट आवंटित किया गया और कुंभ में व्यवस्था को भी हर स्तर पर बेहतरीन बनाने की कोशिश की गई। पहली बार ऐसा हुआ कि राज्य के वरिष्ठ मंत्री देश भर में कुंभ का निमंत्रण पत्र लेकर लोगों के बीच गए। सरकार को उम्मीद थी कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे, लेकिन स्थिति यह है कि मेले में आए श्रद्धालुओं की संख्या पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। प्रयागराज में वरिष्ठ पत्रकार अचिंत्य मिश्र वर्षों से कुंभ मेला कवर कर रहे हैं। उनका कहना है कि दावे चाहे जो हों, लेकिन भीड़ की गणना का कोई भी वैज्ञानिक तरीका नहीं अपनाया गया है।
अनुमान बता रहे हैं, अनुमान भी सब फर्जी है। योगी के पास नौ तरह घाट है जहाँ पे नहा सके थे लोग। सड़कें पूरी पूरी खाली चल रही शहर की, बसें खाली आ रही है, ट्रेनें खाली आ रही है और भीड़ इनकी बढ़ती जा रही है। अनुमान इनका 55 लाख का था, नवा दिया 1.7 करोड़ का। इससे पहले वाले में इनका 1 करोड़ का अनुमान था, 2 करोड़ का। 100% इस 2 स्नान के बाद हम कह सकते हैं इनका अगले स्नान पे 2 करोड़ का अनुमान है। 400 करोड़ उन मिला के बजट जस्टिफाई करने का चैलेंज है।
हालांकि मेला से जुड़े अधिकारी भीड़ से उत्साहित हैं और उन्हें उम्मीद है कि ये आगे और बढ़ेगी। राज्य के सूचना और जनसंपर्क निदेशक शिशिर सिंह कहते हैं,
हम लोग एक्सपेक्टेशन थे कि 60-70 लाख रहेगी। इट रीच्ड मोर देन 1। मेरा अधिकारी तो 1.07 बताया, वो लोग बता रहे हैं और भी थी। लेकिन अब जो अगला वाला है वो तगड़ा वाला जो 4 फरवरी को होगा, उसमें तो बता रहे हैं कि चला जाएगा, 4-5 हो जाएगा।
जानकारों के मुताबिक पिछले कुंभ में पहली बार सांघिकीय विधि से भीड़ का अनुमान लगाया गया था और उसके मुताबिक यदि सभी 35 घाटों पर लगातार 18 घंटे स्नान कर रहे लोगों की संख्या जोड़ी जाए तो ये प्रशासन के दावे से करीब 1/3 भी बहुत मुश्किल से बैठती है। भीड़ की गणना के लिए मेले में आने वाले यात्रियों के रास्तों, साधनों और अन्य चीजों को भी आधार बनाया जाता है। पत्रकार अचिंत्य मिश्र कहते हैं कि भीड़ के सरकारी दावों पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं।
पिछली बार भी ऑफिस वालों ने आपत्ति लगाई थी 2007 वाले कार्यक्रम में, उसमें भी ये बात आई थी कि आप पर इसमें रनिंग स्क्वायर फीट का घाट था और आपने इतने में इतने आदमी कैसे नहा दिए। इस आपत्ति का निराकरण करने में लोगों ने घाट को बढ़ा दिया, जबकि कहीं कोई भी नहीं, सारी पब्लिक यहाँ संगम में उससे नहा रही है। तो अगर वास्तविकता मोनी महोत्सव पे 1 करोड़ आदमी भी आ गए तो बहुत बड़ी हकबा हो जाएगी।
यही नहीं, प्रयागराज के ही रहने वाले एक श्रद्धालु ने हमें बताया कि कुंभ में मकर संक्रांति जैसे महत्वपूर्ण पर्व के बराबर तो हर साल लगने वाले माघ मेले में भीड़ दिख जाती है।
जब भीड़ अगर है ही नहीं, पुल ही नहीं मिलेगा तो भीड़ डाइवर्ट कहाँ से हो रही है? भीड़ भी नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, लोग ऐसे फैला फैला कर रखे हुए, लोग परेशान हो रहे हैं आते जाते।
बहरहाल जानकारों का कहना है कि भीड़ की संख्या का अनुमान ही लगाया जा सकता है, यथार्थ गणना तो असंभव ही है, लेकिन अनुमान तो यथार्थ के करीब होने ही चाहिए। समीर आत्मज मिश्र, BBC प्रयागराज।
और इससे पहले कि हम अगली रिपोर्ट की तरफ बढ़ें, जानते हैं अखबारों में आज क्या है। अखबारों के साथ दिनेश उप्रेती हमारे साथ स्टूडियो में हैं। दिनेश जी, कल दिल्ली का मौसम खराब था, कई जगहों पर बारिश हुई, इसके अलावा अखबारों में और क्या खबरें हैं?
जी मानसी, जैसे कि आपने बताया कि दिल्ली में बारिश हुई और ये 19 साल बाद जनवरी में ऐसी बारिश हुई है, ये दैनिक भास्कर ने तस्वीर के साथ इस खबर को पहले पन्ने पर छापा है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने पश्चिम बंगाल के मालदा में BJP अध्यक्ष अमित शाह की रैली को पहली खबर बनाया है। रैली में अमित शाह ने आरोप लगाया कि नागरिकता संशोधन बिल को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक रोहिंग्या महिला और उनकी बेटी की एक भावुक तस्वीर खबर के साथ पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। खबर के मुताबिक कल BSF ने सीमा पर 31 रोहिंग्या को गिरफ्तार कर त्रिपुरा पुलिस को सौंप दिया। इन रोहिंग्या को न तो भारत अपना रहा है और न ही बांग्लादेश।
जी,
EVM हैकिंग के कथित दावे पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है। नवभारत टाइम्स ने इस पर एक दिलचस्प हेडिंग लगाई है, लंदन में बैठे हैकर के खिलाफ दिल्ली में दर्ज की गई FIR। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को ICC के टॉप 3 अवार्ड्स मिलने की खबर भी कई अखबारों में छाई है। कोहली को क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर और वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है।
और कुछ अखबारों ने इनकी तस्वीर भी छापी है।
हाँ, और खास बात यह है कि एक ही साल में तीनों पुरस्कार पाने वाले वो पहले क्रिकेटर हैं।
जी बिल्कुल।
दक्षिण कश्मीर के शोपियां में एक मुठभेड़ में 3 चरमपंथियों के मारे जाने की खबर भी कई अखबारों में है। मुठभेड़ में मारा गया एक चरमपंथी एक IPS का भाई बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों में विभागवार आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि सभी विश्वविद्यालयों में आरक्षण विभागवार ही लागू होना चाहिए। सरकार की दलील थी कि विभागवार आरक्षण लागू करने से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC वर्ग को नुकसान होगा। एक और खबर है, गूगल राजनीतिक विज्ञापनों का ब्यौरा मार्च में सार्वजनिक करेगी। खबर के मुताबिक इसमें चुनावी विज्ञापन खरीदने वाले व्यक्ति और संबंधित विज्ञापन की जानकारी होगी।
और चुनावों के मद्देनजर इसको बेहद अहम भी माना जा रहा है। अखबारों की विस्तृत समीक्षा के लिए धन्यवाद दिनेश उप्रेती। और अब बात श्रीनगर जम्मू की, जहां का राष्ट्रीय राजमार्ग भारी बर्फबारी के कारण बंद पड़ा है। यह एकमात्र रास्ता है जो कश्मीर को दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। कड़ाके की ठंड में कई आम मुसाफिर समेत सैकड़ों ट्रक ड्राइवर काजीगुंड में फंसे हैं, जहां उनको मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा है। सुनिए श्रीनगर से हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
हल्की फुल्की बर्फबारी हो रही थी और मोहम्मद आरिफ अपना ट्रक स्टार्ट करके बताने की कोशिश कर रहे थे कि ठंड की वजह से उनका ट्रक लंबा सेल्फ लेता है और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आरिफ ट्रक ड्राइवर है, जिनका कहना है कि वह बीते 4 दिनों से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित काजीगुंड इलाके में फंसे हुए हैं। वो कहते हैं कि रात में कई बार उठ के उन्हें ट्रक के बैटरी को चार्ज करने के लिए ट्रक को स्टार्ट करना पड़ता है।
हाँ, सोते गाड़ी में ही है, गाड़ियाँ भी चार पाँच दफा स्टार्ट करनी पड़ती है, बहुत मुसीबत आ रही है सर।
बीते 2 दिनों से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सैकड़ों गाड़ियों को अलग अलग जगहों पर रोक दिया गया है। कश्मीर घाटी में बीते 19 जनवरी से बर्फबारी और बारिशें हो रही हैं, जिसके कारण जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर कई फीट बर्फ जमा हो गए हैं। मंगलवार को हिमस्खलन के कारण राजमार्ग पर स्थित जवाहरी टनल के दोनों सुराख बंद हो गए हैं। राजमार्ग पर जवाहरी टनल के पास वर्ष 1992 में हिमस्खलन से कई लोग हताहत हो गए थे। अम्बाला से आए हुए राम सिंह बीते दो दिनों से कश्मीर घाटी के संगम इलाके में अपने ट्रक में फंसे हुए हैं और रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं।
अब यहाँ दिक्कत ये है कि खाने पीने के लिए बहुत मुश्किल है ना, अब खाने पीने के लिए मुश्किल ये है कि राशन नहीं मिलता, यहाँ पानी लेने जाओ चाहे दूर जाओ इतनी दूर, ठंड में तो बुरा हाल है जी, बस देख लो यहीं पड़ा जो कुछ है, अब घर से इतना कुछ लाते नहीं आदमी, आपके सामने यहाँ बर्तन रखे हैं बस यही है, चाय बनाए पी ली, कुछ ब्रेड ले लिए वो खा लिए, आगे खाने को नहीं खानी। अब तो यहाँ दिक्कत पैसे की दिक्कत है, अब कोई यहाँ पैसा भी नहीं माली भेज सकता, बस ये दिक्कत हो रही है, बस ऐसे ही पड़े हैं।
बीते तीन दिनों से काजीगुंड में फंसे हुए ट्रक ड्राइवर मोहम्मद रमजान कहते हैं कि हमें इस बात की जानकारी तो है कि जब तक रास्ता नहीं खुलेगा उनकी गाड़ियों को आगे जम्मू जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ताहम उनका कहना है कि कम से कम पानी का इंतजाम आसपास होता तो उनकी तकलीफों में जरूर एक कमी आती।
पानी बिल्कुल नहीं है, पानी का बहुत समस्या है यहाँ की, तो हमने सुबह बर्फ घोल कर चाय बनाई है, किसी के घर में जाएंगे वो वही है, वो 2 लीटर या 1 लीटर पानी देता है बस, वो कहता है बस।
300 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 2000 गाड़ियां फंसी हुई हैं। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि खराब मौसम की चेतावनी मिलने के बाद राजमार्ग पर ट्रैफिक की आवाजाही को रोक दिया गया है। आरजी ट्रैफिक आलोक सिंह का कहना था,
उसको माइंड में रखते हुए हमने गाड़ियों को रोकने का बंदोबस्त उसी ढंग से किया, तो लिहाजा पूरे नागरी से लेकर के जवाहर टनल के करीब 70 किलोमीटर के एरिया में स्नो रोड कवर्ड है।
बर्फबारी के कारण घाटी के दूसरे इलाकों में भी गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई है। मौसम ठीक होगा तो राम सिंह जैसे सैकड़ों ट्रक ड्राइवर्स के लिए ये एक बड़ी राहत की खबर होगी। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
और अब चलते चलते सुनते हैं खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह। ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक दौरे के बाद अब टीम इंडिया 23 जनवरी यानी कि आज से न्यूजीलैंड में अपना जलवा बिखेरती नजर आएगी। दोनों टीमों के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज और 3 T20 मुकाबले खेले जाने हैं। वैसे तो ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए आगामी विश्व कप के लिहाज से काफी अहम है, लेकिन इसके अलावा वनडे रैंकिंग के नजरिए से भी ये दौरा काफी अहम होगा। अगर टीम इंडिया ने 5 वनडे मैचों की सीरीज को क्लीन स्वीप कर दिया तो उसे 3 अंक हासिल होंगे और न्यूजीलैंड की टीम 2 अंक गवा देगी। ऐसे में टीम इंडिया टॉप पर बनी इंग्लैंड जिसके पास 126 अंक हैं उसके करीब पहुंच जाएगी। भारत के पास अभी मौजूदा समय में 121 अंक हैं और वो अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। तो अगर आज पहले मैच की बात करी जाए तो क्या भारत न्यूजीलैंड पर भारी पड़ सकता है, बता रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली।
भारत के पास भी बॉलर्स हैं जो इसी न्यूजीलैंड टीम को बहुत परेशान करेंगे उन्हीं पिचेस पे, खास करके मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है भुवनेश्वर से, क्योंकि ये कंडीशंस उनको बहुत बहुत हेल्प करेंगी। बेशक भारत ने बुमराह को बिठा दिया है, पर भुवनेश्वर के लिए एक अच्छा मौका है कि वो दिखाएं कि जो उनसे उम्मीद है वो उस पे खड़े उतरेंगे।
इन दोनों टीमों की वनडे क्रिकेट में जब जब भिड़ंत हुई है तब सबसे सफल ज्यादातर तेज गेंदबाज ही रहे हैं। खेल समाचारों में आज इतना ही।
और कार्यक्रम में आपसे विदा लें उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर दिनेश उप्रेती से।
BBC समाचार। जिम्बाब्वे में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा है कि कथित इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों को हराने के बाद ही अमेरिका सीरिया से अपने सैनिक हटाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ट्रांसजेंडर्स को सेना में जाने से रोकने की नीति लागू करने की हरी झंडी दे दी है। वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी वाडा ने रूस पर फिर से प्रतिबंध नहीं लगाने का फैसला किया है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में सशस्त्र समूह बड़े पैमाने पर मानव तस्करी में शामिल हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आतंकवाद निरोधी दस्ते के कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर आरोप लगाया कि वे कोर्ट के मामलों में लगातार दखलंदाजी कर रहे हैं। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला देवाशीष कुमार ने। अगला प्रसारण दिन भर शाम 7:30 बजे। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।